श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। आज हमारे चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट के पश्चात होने वाले एक विशेष सत्र में सर्वप्रथम हम सभी भक्तों का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस कंटेस्ट में उत्साहपूर्वक भाग लिया प्रतियोगिता में और बहुत अच्छे से डटकर पढ़ाई भी की और खास करके जो है वो लगभग 363 भक्त इस परीक्षा के लिए अपीयर हुए। ये अलग अलग 10 देशों से ये लोग थे जिसमें से भारत से लगभग 20 राज्यों से और विश्व भर के लगभग 40 स्टेट्स यहाँ से जो है वो भक्तों ने भाग लिया था। और हमने तो ऐसे ही सोचा था शुरुआत में कि जैसे ही लॉकडाउन भारत में अनाउंस किया गया 25 अप्रैल से, तो हमने सोचा था कि चैतन्य चरितामृत हम लोग शुरू करते हैं ताकि भक्तों के लिए समय बिताना आसान हो जाएगा और चैतन्य चरितामृत के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी और उनका जो भय है सबसे पहले वो कम हो जाएगा। और जब 2-3 दिन हो गए तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक परीक्षा भी रखी जाए। तो फिर जल्दी जल्दी जो है हमने सारा पोस्टर वगैरह बनवाया और सब जगह वो सर्कुलेट किया गया, कहाँ कहाँ तो वो फैल गया। और खास करके हम हमारे कांग्रेगेशन के वृंदावन विलासिनी माता जी, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अलग अलग विश्व भर के उनके जो कॉन्टेक्ट है वहां तक इसे फैलाया और उनके द्वारा फिर दुबई के, शारजा, यूएई, अलग अलग जगह गल्फ, वहां से जो है वो भक्त इसमें भाग लिए, तो उन्हें भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और खास करके जो है वो इसमें पास या फेल होना इतना ज्यादा मायना नहीं रखता था क्योंकि केवल चैतन्य चरितामृत सुनना, उसका अध्ययन करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप पास भी नहीं होंगे तो भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कतराने की आवश्यकता नहीं है। और 30 भक्त लगभग सारे इसमें हैं जिनको 93% एंड अबव मार्क्स मिले हुए हैं। तो हमने प्रश्न आपको बताए थे कि 3 प्रकार के प्रश्न इसमें होने वाले थे। जैसे हमने बताया था हमारे मध्य लीला के चर्चा में भी हमने चर्चा किया था कि वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी संसार में 3 स्तरों पर होता है, पूर्ण कृष्ण, पूर्णोत्तर कृष्ण और पूर्णतम कृष्ण, वो हमारे मध्य लीला में हमने देखा था। तो इसी प्रकार से हमने कहा था कि 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्न, प्रश्नोत्तर और प्रश्नतम। तो ये तीन प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए, और हमने इस प्रकार से सोचा था, हमारा ये संकल्प था कि कोई ऐसा नहीं होगा जो 100% मार्क्स ला पाएगा, ये हमारा निर्धार था। लेकिन एक माताजी है रमणी रोहिणी माताजी यूएई से, जिन्होंने हमारे इस संकल्प को छेद लगा दिया, इसे भेद कर दिया, और उनको 100% जो है वो मार्क्स आए हुए हैं। तो 70 में से 70 जो है वो उनके सही निकले हुए हैं, तो हम उन्हें भी मनपूर्वक जो है वो धन्यवाद देना चाहेंगे और उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो है वो काफी डट कर जो है वो पढ़ाई की है, और हमारे इस जो संकल्प था कि 100% नहीं, 99% कोई ला सकता है हमें पता था, लेकिन 100 नहीं ला पाएगा, इस प्रकार से हम लोग प्रश्न पत्रिका निकालने में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी जो है वो इन माताजी को हम लोग बधाई देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे, और हमारी सारी सोशल मीडिया टीम को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने जब भी जैसे ही हमने ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया अप्रैल महीने में, तो देश विदेश में जो है इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी फैल गई और काफी लोगों के जो है वो प्रश्न वहां पर आना जो है वो शुरू हो गया। और किन किन तरीकों से भक्तों ने पढ़ाई की उसके भी जो है वो सराहना करने योग्य है। कुछ भक्तों ने तो इंटरनल अपने ग्रुप्स बना लिए थे और इस प्रकार से वो हर रोज अपनी ओर से प्रश्न निकाल के उन ग्रुप्स में डाला करते थे और फिर उसका जवाब ढूंढते थे। हमने भी CCC करके ऐसे दो ग्रुप्स बनाए थे जिसमें लगभग 500 लोग थे, और हम भी एक प्रश्न दिया करते थे और उन प्रश्नों का स्तर धीरे 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 बढ़ता गया था। कभी कोई समझ पे आधारित है, कोई किसी के आधार पर आधारित था, इस प्रकार से जो प्रश्न है, तो इन प्रश्नों से भी काफी लोगों को प्रेरणा मिली कि हमें जो है वो और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। एक ग्रुप का तो मुझे एक और कई सारे ग्रुप्स अलग अलग प्रश्न पूछा करते थे, तो दिन में हमारा ये काफी सारा समय इन प्रश्नों को सुलझाने में भी जाता था। तो एक ग्रुप था वो शायद यूएई का ही था, तो उनमें से एक भक्त ने प्रश्न पूछा था आदि लीला के 17वें अध्याय से, जो लीला हुई थी ना उसका विस्तार से तो नहीं लेकिन सारांश में वर्णन किया गया है कविराज गोस्वामी ने, क्योंकि वो लीला विस्तार से चैतन्य भागवत में आती है कि शिवास ठाकुर के घर पे जो महाप्रकाश लीला हुई थी और उसमें अद्वैताचार्य इनके प्रति शची माता का अपराध क्षमा किया गया। तो उस लीला से संबंधित एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, उसका काफी हमने एनालिसिस किया और बाद में हमें समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है उसके भाषांतर में ही गलती थी। तो अद्वैतेर ठई अपराध क्षमाइला, अद्वैतेर स्थानी, तो स्थानी का अर्थ है कि अद्वैताचार्य के प्रति अपराध जो है वो क्षमा किया गया, और उस भाषांतर में लिखा है कि अद्वैताचार्य के घर पे, और वास्तव में ये हुआ था लीला शिवास ठाकुर के घर पे। तो इस प्रकार से फिर हमने BBT में संपर्क करा के ये जो है वो, तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि इतना गहराई में भक्तों ने पढ़ाई किया है कि ये श्रील प्रभुपाद जी के भाषांतर की भी गलती जो है वो सामने प्रस्तुत हो गई, और फिर हमने एक BBT को मेल लिखा है कि इस प्रकार से जो है वो गलती ढूंढ ली गई है, तो इसे आप ठीक से जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक द्रविड़ प्रभु है जो सब इसको देखते हैं, उन्हें एक मेल लिखा गया है हमारी ओर से, और एक शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी को भी हमने इस प्रकार से जो है वो लिखा है। तो इस प्रकार से जो है वो गहराई में भक्त पढ़ रहे थे। एक परिवार तो बता रहे थे, हमारे कोठावदे परिवार, उनकी लड़की भी है, वो अभी मई के आई हुई है, लॉकडाउन में यहीं पे रह गई, उनका लड़का है जो कॉलेज में पढ़ाई करता है, माता पिता चारों भक्त एकत्रित आके दिन में 3 घंटा वो चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा किया करते थे। तो सारे जो है वो भक्त बैठते थे और उन्होंने सारे अनुवाद श्लोक और भाषांतर जो है वो रिकॉर्ड किया था मोबाइल में, और दिन भर वो रिकॉर्डिंग सुना करते थे, तो जो है वो भाषांतर कुछ भी मिस नहीं हो जाए, इस प्रकार से हमेशा वो सुनते रहते थे। तो इस प्रकार से जो है वो कई सारे भक्त कई सारे कार्यों में जो है वो पढ़ाई करने में लगे हुए थे। और आपको पढ़ाई करने में और परीक्षा देने में जरूर आनंद आया होगा, तो उस आनंद का श्रेय हमें नहीं जाता है, तो काफी भक्त कह रहे हैं कि उसका श्रेय हमें दे रहे हैं, कि उसका श्रेय हमें वास्तव में देना चाहिए वो कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत इस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो स्वयं कहते हैं, चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम चरवण कोरिते हो या रसास्वादन, चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम, इक्षुदंड का अर्थ होता है गन्ना, तो चैतन्य चरितामृत जो है वो गन्ने के दंडे के समान है, जैसे गन्ना होता है चैतन्य चरित्र ये इक्षुदंड सम, जैसे गन्ना होता है उसी प्रकार से ये चैतन्य चरित्र है। जितना हम उसे पुनः पुनः चरवण करते हैं गन्ने को, उतना उसका रस आस्वादन बढ़ता है। चरवण कोरिते हो रसास्वादन, तो उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत आपने परीक्षा के लिए बार 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 पढ़ा होगा, तो इसलिए जो है वो आपको उसमें आनंद आया, ऐसा जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। और हमारा जैसे ही हमने लॉन्च किया था कि ये 21 दिन की सीरीज हमने पहले रखी थी, लेकिन ये बाद में बढ़ते बढ़ते गई। लॉकडाउन 1.0 था 21 दिन के लिए, फिर लॉकडाउन 2.0 आया, फिर भी हमारी सीरीज आगे बढ़ती रही। अभी लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया है आज से ही, तीन मई तक था पहले। तो हमारा श्रृंखला जो है वो आगे चलते ही जा रहा है। तो सबसे पहले हमें चिंता थी कि हम लोग फेसबुक लाइव करेंगे, यूट्यूब लाइव करेंगे, तो हमने बिना परमिशन लिए इसका पब्लिसिटी तो कर दिया। बाद में हमारे सरस कृष्ण प्रभु राजी हो गए कि वो जो है वो शूटिंग करेंगे। तो वो केवल शूटिंग करने के लिए आया करते थे और उन्हें बैठना ही पड़ता था वो, और उन्हें सुने नहीं सुने उनके कान पे तो पड़ता ही था। तो चैतन्य चरितामृत इतना उन्हें मधुर लगा कि वो भी उसके प्रति आकर्षित हो गए, और उन्होंने फिर जो है वो एग्जाम के लिए भी एनरोल कर दिया कि चलो मैं भी परीक्षा देता हूँ। और खुशी की बात है कि 97% लेके वो भी पास हो गए अच्छे से। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की गई चरणों की तुलसी, जब चतुष्कुमार उसकी गंध लेते हैं तो उनका भी मन जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजुषां अपिचित्त तन्वोः। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, ऐसे अरविंद भगवान जिनकी आंखें कमल जैसी है, उनके पदारविंद में जो किंजल्क मिश्र तुलसी, जो केसर मिश्रित तुलसी उनके चरणों में चढ़ाई जाती है, मकरंद वायु और उससे जो हवा उसे स्पर्श करके जो बहती है, अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम, उनके नासिका से वो हवा अंदर चली गई और संक्षोभ मक्षर जुषाम अपिचित्त तन्वो हो, उनके चित्त में क्रांति मचा दी और वो अक्षरवादी थे लेकिन ब्रह्मवादी थे लेकिन फिर भी भगवान के बड़े भक्त बन जाते हैं ये चतुष्कुमार। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत ऐसा है कि ये प्रभु आए थे केवल शूटिंग करने के लिए, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के इस आस्वादन कथा के प्रति इतने आकर्षित हो गए, और वो इस प्रकार से बता रहे थे कि अभी जो चैतन्य चरितामृत इतना जहन में घुस गया है कि दिन भर हम पढ़ाई करते हैं, शाम को आपका प्रवचन सुनते हैं, तो रात को नींद भी नहीं आती, नींद में भी दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु अभी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो अभी आप ये कथा थोड़ी बंद कर दो, उसे विराम दो, कैसे तो हमारा मन से चैतन्य महाप्रभु निकल जाए। तो मैंने कहा कि ये तो श्रीमती राधारानी की भी प्रार्थना ऐसी होती है कि क्या करो, क्या योग करो जिससे ये कृष्ण का स्मरण हमें नहीं हो, तो ये जीवन की परमोच्च सिद्धि जो है वो इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भक्त जो है वो इस परमोच्च स्थिति तक पहुंच गए कि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे सरस कृष्ण प्रभु, जो लगातार जो है वो उनकी तबीयत भी कई एक बार ठीक नहीं थी, फिर भी वो दूर से वो अपना मोबाइल के द्वारा ऑपरेट करते थे, और हमारे साथ सारी सोशल मीडिया जो टीम लगी हुई है, जो लिंक भेजने का काम करते हैं, ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं, उन सबका भी हम लोग जो है वो धन्यवाद देना चाहेंगे। और खास धन्यवाद हम एक माता जी है हमारे नासिक कांग्रेगेशन में, उनको देना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि अपना नाम नहीं बताए, जो हमें प्रश्न निकालने के लिए जो है वो मदद किए हैं। तो माता जी प्रश्न और प्रश्नोत्तर उन्होंने निकाले है, प्रश्नतम के लिए जो है वो मेरा क्रूकेड माइंड लगा हुआ है, क्योंकि माता जी उनका हृदय हमेशा सौम्य होता है, वो आसान प्रश्न देना चाहती है, और जो पुरुष स्वभाव होता है उनको थोड़ा कठिनाई कुछ चाहिए तो उसमें आनंद आता है। तो जो कठिन प्रश्न है उसमें जो प्रश्न और प्रश्नोत्तर जो मिडिल कैटेगरी तक है वो उन्होंने निकालने में काफी हमारी मदद की है, तो उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारा खास धन्यवाद हमारा गोकुल महाजन प्रभु, जो कि मेरे भाई है, और उनकी पत्नी मयूरी माता जी, इनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, जो पूरा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टिंग का जो प्रोसेस था वो इतना पेचीदा था और उसमें इतने सारे अवरोध थे, उन सारे अवरोधों को लांघकर जो है वो सक्सेसफुली इसे कंडक्ट करना, क्योंकि अभी तक आपने कौन सी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं देखी होंगी कि आपने एग्जाम दिया, सबमिट बटन दबाया और 5 मिनट के अंदर आपके ईमेल बॉक्स में सर्टिफिकेट आके पहुंचता है परसेंटेज मार्क्स के साथ। तो इसके लिए भी काफी मेहनत, उसके ट्रायल एंड एरर और फिर कौन से लेवल तक जाके पहुंचना और गूगल तक जो है वो संपर्क करना और उसके आधार पे ये एग्जाम लॉन्च की गई है। तो हम स्पेशल धन्यवाद जो है वो उनको भी देना चाहेंगे। कई बार जो है वो सोते भी नहीं थे और वो लिंक सर्कुलेशन का भी वो काम किया करते थे और कई सारे भक्त जब एग्जाम शुरू हो जाती थी तो प्रश्न भेजते थे, हमारी लिंक खुल नहीं रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी उन्हें सतर्कता से रहना पड़ता था। और हमारे वृंदावन बेस के अमित कोले प्रभु, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो वहां से बैठ के हमारा ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण जो होता है अलग अलग चैनल्स पे, यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो, उसके लिए वो पूरा बैकग्राउंड में मदद करते हैं। तो हम आप तक पहुंच रहे हैं और आप परीक्षा दे पा रहे हैं, सब कुछ बैठे बैठे, हर कोई जगह अपने अपने घरों में बैठा हुआ है, सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, कुछ लोग क्वारंटाइन है, कुछ लोग लॉकडाउन में है, कुछ कंट्रीज ऐसे है कि वो लॉकडाउन में नहीं है, फिर भी जैसे एक माता जी बता रही थी, वो भी शारजा की है, कि उनके 2 छोटे बच्चे है और उन्हें हमेशा परेशान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो कभी आखिर तक जो है वो रात रात भर जग कर उन्हें पढ़ाई की और ये परीक्षा पास की है। तो इस प्रकार से सारे भक्त जुटे हुए हैं और हम लोग इस प्रकार से एकत्रित आके चैतन्य महाप्रभु की कृपा अर्जन करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो कहा करते थे कि डिवोटीज शुड स्टडी माई बुक्स, नॉट ओनली रीड माई बुक्स बट दे शुड स्टडी माई बुक्स। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो केरला वगैरह से थे और कुछ अबू धाबी वगैरह में है, उन्हें तो हिंदी भी समझ नहीं आती थी, तो ये हमारे 8 प्रवचन जो आदिलीला के आधार पे थे उन्होंने संभव सुने, हिंदी समझ में नहीं आ रही थी फिर भी उन्होंने सुना, उसके आधार पे पढ़ाई किया। उन लोगों के पास किताब भी नहीं थी तो वेदा बेस से कुछ ढूंढ के श्लोक वो पढ़ा करते थे। इस प्रकार से जो उत्साहमय वातावरण बन गया था, तो आशा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हम सबके ऊपर बरसे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो और होती रहे। क्योंकि कविराज गोस्वामी ऐसा ही कहते हैं कि भव सिंधु तरिबारे आछिया रचित्त श्रद्धा करी शुण से ही चैतन्य चरित्र। भव सिंधु तरिबारे आछिया रचित्त, जिसके चित्त में बैठा है कि ये भव सिंधु मुझे पार करके जाना है। भव सिंधु तरिबारे आछिया रचित्त श्रद्धा करी शुण से ही चैतन्य चरित्र। श्रद्धा से आप जो है वो केवल चैतन्य चरितामृत सुनो, पढ़ो, अध्ययन करो, आपका भव सिंधु पार करने का यदि इच्छा है तो। तो हम सब जो है वो भव सिंधु पार कर सकते हैं यदि हम लोग इस प्रकार से कविराज गोस्वामी द्वारा दिए चैतन्य चरितामृत रसामृत सिंधु में जो है वो यदि हम लोग डुबकी लगाते हैं तो। तो कई भक्तों का ये था कि हमें प्रश्नों के जवाब देखने थे, कुछ लोगों के तो एक गलत हो गए, 2 गलत हो गए, कुछ के 3 गलत हो गए, तो कहां गलत हो गए वो समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग प्रश्नोत्तर इसके ऊपर चर्चा करें। मैं आपको बता भी दूं कि कौन से जो है वो कठिन प्रश्न के रूप में हमने प्रस्तुत किए गए थे और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, ताकि हमारे पूरे आदि लीला, क्योंकि ये सारे प्रश्न सारे 17 अध्यायों पर थे, तो हम लोग थोड़ी भी चर्चा करते हैं तो हमारे 17 अध्यायों की थोड़ी 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 रिविजन भी जो है वो हो सकती है। तो अभी हम प्रश्नोत्तर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ कुछ बिल्कुल ही आसान सवाल थे। हमारा ऐसा मानस था कि जिसने केवल जनरल नॉलेज अभी तक इस्कॉन में कुछ सुना है गौर पूर्णिमा के महोत्सव में या और कहीं पे, वो भी व्यक्ति पास हो सकता था, लेकिन केवल उसी के आधार पे जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता था जब तक वो अच्छे से पढ़े नहीं, अच्छे से सुने नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें था कि वृंदावन दास ठाकुर, इनकी माता का नाम वो है नारायणी, तो उनके ऊपर भी कैसी कृपा हुई थी नारायणी के ऊपर, ये हमने चर्चा किया था। पंडित हरिदास ये किसके शिष्य थे, ये दूसरा प्रश्न था, तो वो अनंत आचार्य इनके शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ किया था, तो वो था 11वीं आयु, जिसे कैशोर वय का प्रारंभ माना जाता है, जो 4 महाप्रभु की लीलाओं का 4 विभाजन किया जाता है, बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन। तो इस प्रकार से इन 4ों में विभाजन किया जाता है, तो उसमें कैशोर मतलब 11वीं वर्ष में उन्होंने प्रारंभ किया था। चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम, इनका नाम था लक्ष्मी देवी, और दूसरी पत्नी थी वो थी विष्णुप्रिया। चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई किसने रखा था, तो ये नाम रखा था सीता ठकुरानी इन्होंने, जो अद्वैताचार्य की पत्नी है। नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था, और खास करके उस समय जो है वो काफी सारा अशुभ लक्षण वहां पर दिखाई दे रहे थे, ग्रहण था, तो शुभत्व लाने के लिए उन्होंने निमाई नाम रखा था। महाप्रभु के अलग अलग नाम रखे गए हैं, विश्वंभर नाम रखा था उनका, नीलांबर चक्रवर्ती इन्होंने, तो इस प्रकार से अलग अलग नाम थे। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए किसने क्या नाम रखा था। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी, ये था छठा प्रश्न। तो गया में ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। सातवां प्रश्न था, चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को किस दिन हराया था। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न था, तो आपने यदि ज्योत्सनामयी रात्रि ऐसा भाषांतर श्लोक में आता है कविराज गोस्वामी के, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूर्णिमासी की रात थी वो, तो पूर्णमासी की रात, यहाँ पे कुछ भक्त शायद लुढ़क गए होंगे, तो वो पूर्णमासी की रात थी। आठवां प्रश्न था, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास कहाँ ग्रहण किया था, तो वो कटवा में ग्रहण किया था केशव भारती इनके द्वारा। अद्वैताचार्य किन के अवतार है, तो अद्वैताचार्य महाविष्णु इनके अवतार है, महाविष्णु जगतकर्ता, और वो श्लोक भी आता है अद्वैत हरिणा अद्वैतात, उसमें भी बताया गया है, तो महाविष्णु के अवतार थे। दसवां प्रश्न था, कौन से अध्याय में भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन है, तो यह नौवे अध्याय में वर्णन आता है भक्ति कल्प वृक्ष का। आपको याद होगा हमने जो 16 अध्याय थे, सारे 16 अध्यायों की जो है श्रृंखला याद रखने का प्रयास किया था हमारे आदि लीला के चर्चाओं के सत्र में। तो आपको यदि आंख बंद करके आपके पहले से 17वें अध्याय तक गिनना चाहिए तो गिना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है वो रिविजन करा ली थी आपसे, और उसकी इंडेक्स भी आपको जो है भेजी गई थी। कविराज गोस्वामी ने कहा है कि मैंने कौन से अध्याय में किस किस चीज का वर्णन किया हुआ है, तो भक्ति कल्प वृक्ष 9वें अध्याय में आता है। कौन से साल चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया, ये हमारे कठिन प्रश्नों में से एक था, क्योंकि 1486 आपको जन्म साल तो पता ही था, और 1534 में महाप्रभु ने प्रयाण किया था इस संसार से वो भी पता था। संन्यास कब ग्रहण किया था वो भी हम सब ने सुना था, 24 साल की उम्र तो उनकी पूरी हो गई थी, और 25वां साल प्रारंभ होते ही उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था। तो ऑप्शन 1510 उसका सही जवाब है। आपको यदि याद नहीं होगा तो मैं स्मरण कराऊं, सन 2010 में इस्कॉन के GBC इनके द्वारा एक उपक्रम जो है मनाया गया था, चैतन्य महाप्रभु की संन्यास की 500वीं वर्षगांठ, तो वो 2010 में मनाया था। आपको उसका भी यदि स्मरण रहता तो ये 1510 सही जवाब आ जाता। तो कुछ भक्तों ने 1511 भी किया था, इसमें वो जो है वो थोड़ी कठिनाई आ गई होगी उनको। राघवेर झाली अर्थात राघव पंडित की थैलियों का भोजन उनकी बहन थी दमयंती, वो बनाया करती थी, उसका दमयंती जवाब है। 13वां प्रश्न, किसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का साक्षात आवेश और आविर्भाव तीनों रूपों में अनुभव किया था, तो इसका जवाब था श्री शिवानंद सेन। तो ये तीन प्रकार से महाप्रभु अपनी कृपा दिया करते थे, साक्षात दर्शन मतलब वो अपना दर्शन दिया करते थे जिनके सामने आमने सामने, दूसरा था आवेश मतलब किसी के अंदर आवेश कर देते थे, जैसे भूत किसी के अंदर संचारित हो जाता है तो उस प्रकार से आवेशित करते थे, और नकुल ब्रह्मचारी इसका उदाहरण है। और आविर्भाव मतलब ऐसी जगह महाप्रभु प्रकट हो जाते थे जहां पर वो साक्षात रूप में प्रकट नहीं है लेकिन उनका उनकी उपस्थिति महसूस हो सकती थी कुछ भक्तों को। तो चार जगह है जहां पे महाप्रभु अवतरित हुआ करते थे, शचीर मंदिर है, नित्यानंद नर्तन है, राघवेर भवन है एंड श्रीवास कीर्तन है। तो इन चार जगहों पर आया करते थे आविर्भाव के रूप में। लेकिन जो अध्याय 10 है उसमें बताया गया है कि शिवानंद सेन ने इनके सामने महाप्रभु तीनों प्रकार से जो है वो अपनी कृपा दिए थे उन्हें। और मध्य लीला और अंत लीला आप सुन रहे होंगे तो उसमें ये वृत्तांत आ गया है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है वो दर्शन दिया था तीनों प्रकार से। नित्यानंद प्रभु का लड़का तो इनका नाम है वीरभद्र गोसाई। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी देवी इनका विवाह किसने करवाया था, तो वनवाली घटक वो थे, उन्होंने करवाया था। वो महाप्रभु की मां के पास जाते हैं और प्रस्ताव रखते थे। कौन है जो प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे, और यात्रा पर जाते समय सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे, तो टोल टैक्स। तो हमने मध्य लीला में भी काफी सुना है कि सारे बंगाल से भक्त जाते थे और उनका वहन करते थे शिवानंद सेन। तो ये भी आसान जवाब था। चैतन्य महाप्रभु की शेष लीलाओं के संक्षेप में लिपिबद्ध किन्होंने किया है? तो स्वरूप दामोदर ने किया है, हमें पता है दो भक्तों ने, मुरारी गुप्त, इनके कड़चा के आधार पर आदि लीला गठन की गई है, और स्वरूप दामोदर, इनके कड़चा यानी नोट्स के आधार पर जो है वो शेष लीला संपूर्ण गठन की गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक सत्य के कितने विभिन्न रूपों की चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण के पहले श्लोक में की है? तो जो पहला श्लोक हमने याद करने के लिए दिया था उसके आधार पर यह प्रश्न है। वंदे गुरुन ईशभक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यगम। तो ये छह तत्व है, तो इसका जवाब है कि छह विविध रूपों के चरण कमलों में वंदना की है, और ये जो है वो इसलिए सामान्य प्रणाम है क्योंकि विभिन्न लोगों को प्रणाम किया गया है। जो विशेष प्रणाम होता है उसमें केवल विशेष व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विलास विग्रहों के उदाहरण है? तो उसमें वासुदेव और नारायण उपर्युक्त दो जो है वो दोनों जवाब में लिए जाएंगे, क्योंकि रासलीला के समय जो भगवान के विग्रह अलग अलग प्रकट होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले होते हैं, उन्हें प्रकाश विग्रह कहा जाता है, और जो विलास विग्रह होते हैं उनमें थोड़ा सा भेद होता है। तो ये है उसका जवाब। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप में सारे भक्त जो है वो अद्वैताचार्य इनके घर पे जमा हुआ करते थे, और अद्वैताचार्य उन्हें भगवद गीता और श्रीमद भागवत इनका पाठ कराया करते थे। संन्यास के पश्चात शेष कितने वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु निरंतर जगन्नाथपुरी में रहे? तो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला था, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि 24 साल महाप्रभु की आदि लीला है, 24 साल शेष लीला है। तो शेष लीला में जो पहले 6 साल है महाप्रभु घूमते रहे, जगन्नाथपुरी में गए थे वो संन्यास के पश्चात, लेकिन वहां पर वो निरंतर रुके नहीं, उसके पश्चात दक्षिण भारत गए, उसके पश्चात वृंदावन गए, बंगाल भी गए, और फिर पुरी में आए। तो निरंतर जब वो पुरी में रहे, कहीं पर गए नहीं, तो वो आखिर के 18 साल, तो वो जो 18 साल है वो उसका जो है वो जवाब है। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्नोत्तर कैटेगरी का ये प्रश्न था। चैतन्य महाप्रभु ने किसका कच्चा चावल खाया था? तो वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी इनका कच्चा चावल खाया था। कविराज गोस्वामी ने इसका बिल्कुल एक पंक्ति में वर्णन किया हुआ है, आदिलीला के अध्याय 10 में, लेकिन चैतन्य भागवत में इसका एक संपूर्ण अध्याय है, चैतन्य महाप्रभु टेकिंग रॉ राइस फ्रॉम शुक्लांबर ब्रह्मचारी, इसका एक पूर्ण अध्याय जो है वो कैसे वो लीला हुई वो चैतन्य भागवत में पूर्ण उसका वर्णन आ जाता है। किसके जो है वो सारे जीव समुदाय के परमात्मा है, कौन है वो? तो वो है गर्भोदक शय विष्णु। 23वां प्रश्न है हमारा। गर्भोदक शय विष्णु सारे जीव समुदाय के परमात्मा है, और व्यक्तिगत जीव के जो परमात्मा है वो क्षीरोदक शय होते हैं, व्यक्तिगत के क्षीरोदक शय और सारों के एकत्रित में गर्भोदक शय। तो गर्भोदक शय इसका सही जवाब है। असंगत व्यक्ति को अलग करे, तो चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, नित्यानंदपुर और अद्वैताचार्य ये दिए गए है। तो हमें असंगत व्यक्ति को कैसे अलग करना है? तो जब पंचतत्व का निरूपण हमने किया था आदि लीला के 7वें अध्याय में, तो उसमें हमने बताया था कि जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, तो ये 5 तत्व है, तो उसमें से 3 जो है वो आराध्य है और 2 आराधक है। तो 3 आराध्य है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। तो इसमें असंगत आते हैं वो है आराधक, तो इसमें आराधक आते हैं गदाधर पंडित, तो इसलिए गदाधर पंडित जो है वो थोड़े विसंगत हो जाएंगे। तो उसके आधार पर ये प्रश्न था, ये भी थोड़ा कठिन प्रश्न में से ही इसकी गणना हो सकती है, लेकिन कई भक्तों को जो है वो ठीक से आया। एक भक्त ने तो किसके आधार पर इसका जवाब लिखा वो बता रहे थे, जैसे कविराज गोस्वामी पहले प्रार्थना करते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, तो बोले इसमें चैतन्य नित्यानंद और अद्वैत है, गदाधर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वो गदाधर को असंगत कर दिया था। लेकिन असंगति जो है उसका हमने मन में ये भावना थी, ठीक है वो भी सही है, जवाब तो सही आ गया है, लेकिन वो क्या कौन आराध्य है 5 में और कौन आराधक है उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ऐसा अपेक्षित है। धीर गंभीर कौन है जो मुख्य केंद्रीय जड़ बने और 8 दिशाओं में अन्य 8 जोड़ों समेत चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष को सुस्थिर बनाया? तो इसका जवाब है परमानंदपुरी, जो प्रमुख जो है वो जो 9 रूट्स जिसे कहा जाता है जड़े हैं, उसमें प्रमुख जड़ है जो 8 जड़ों को जो है वो सहारा देती है, तो वो थे परमानंदपुरी, भक्तिकल्प वृक्ष का ही जो है वो ये प्रश्न था। हाँ, ये प्रश्न भी थोड़ा कठिन था। लादिनी भगवान के कौन सा पक्ष है, संदिनी कौन सा पक्ष है और संवित कौन सा पक्ष है? तो कविराज गोस्वामी ने इसका बहुत सुंदर श्लोक भी बताया है कि लादिनी जो है वो आनंद का अंश है। तो ये तो सबको आपको पता ही होगा, कई भक्त यहाँ पे कंफ्यूज हो गए संदिनी और संवित किसके है। तो जो संदिनी है वो भगवान के नित्य अस्तित्व का है। हमने कहा था संदिनी शक्ति के द्वारा कराए भरण पोषण, संदिनी के द्वारा जो है वो धारण किया जाता है, तो वो जो है वो अस्तित्व का शक्ति, अस्तित्व की शक्ति है। और संवित जो है वो ज्ञान 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 का अंश है। तो भगवान का स्वरूप होता है सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित का अर्थ है ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंदमय। तो जो सत है, सत अंश, वो संदिनी प्रस्तुत करती है, चित अंश संवित प्रस्तुत करती है और आनंद अंश लादिनी प्रस्तुत करती है। तो ये तीन सच्चित आनंद भगवान की तीन शक्तियों के द्वारा जो है वो प्रकट होते हैं। तो ये तीन फिल इन द ब्लैंक्स थे और यहां वहां घुमाया था तो शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ भक्त। तो डी है इसका जवाब, आनंद नित्य अस्तित्व और ज्ञान। कितने घंटे में केशव भारती ने गंगा माता के वर्णन करते हुए कितने श्लोक रच डाले? तो एक घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना उन्होंने की थी। तो ये भी उसका जवाब है। ये आसान ही प्रश्न था, जिन्होंने भाषांतर ठीक से पढ़ा था उन्हें समझ में आ गया होगा। आदि लीला का कौन सा अध्याय महाप्रभु की पौगंड लीला का वर्णन करता है? तो हाँ, तो याद रखने के लिए भी हमने बताया था पौगंड 15वां अध्याय। तो हमने कहा था ना महाप्रभु 13वां अध्याय जन्म लेते हैं और 14, 15, 16, 17 बाल्य पौगंड कैशोर यौवन, हमने ये भी बताया था और बार बार इसे दोहराया भी था। तो जिन भक्तों ने प्रवचन भी ठीक से सुना होगा तो भी वो बता सकते थे कि ये पौगंड लीला 15वें अध्याय में वर्णन आती है। संध्या समय काजी के घर जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो बाहर गए और कीर्तन करने के लिए कितनी मंडलियां बनाई थी? तो उन्होंने 3 मंडलियां बनाई थी। सबसे सामने कौन नाच रहे थे यदि आपको पता है, बीच में कौन नाच रहे थे और लास्ट में कौन नाच रहे थे, इसका भी हमने जो मॉक टेस्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो कई सारे प्रश्न यहाँ पर जो आए थे वो मॉक टेस्ट से संदर्भित ही थे लेकिन वही नहीं थे। उसमें प्रश्न पूछा था कि सबसे आगे कौन नाच रहे थे, बीच में कौन नाच रहे थे, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए ताकि आप समझ में लाए कि 3 टोलियां बनाई थी, महाप्रभु सबसे पीछे नाच रहे थे। तो ये तो 70 हमने प्रश्न केवल पूछे लेकिन मॉक टेस्ट में जो 20 प्रश्न थे और बीच बीच में हम लोग जो सैंपल प्रश्न भेज रहे थे तो ये सारे प्रश्न जो है वो हम लोग एक साथ नहीं पूछ पाए, लेकिन वो सारे प्रश्न जो है वो सैंपल में भी भेजे गए, वो भी महत्वपूर्ण ही प्रश्न है ऐसा समझना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो जो आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए कौन 3 व्यक्ति उनके साथ उपस्थित थे? तो वर्णन आता है नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त, ये जो है वो 3 व्यक्ति उनके साथ जो है वो संन्यास के समय सारी तैयारी करने के लिए उनके साथ उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत का अंग्रेजी भाषांतर कौन से साल पूर्ण किया? तो ये प्रवचन के आधार पे था, हमारा जो पहला इंट्रोडक्टरी प्रवचन हुआ था 1974, इसका जवाब है 1974, उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा किया था। और हाल ही में मैं श्रील प्रभुपाद जी का आदिलीला के ऊपर एक प्रवचन सुन रहा था तो 1973 का मायापुर में दिया हुआ वो प्रवचन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे उसमें कि प्रवचन में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कहे कि पिछले साल जब हम यहाँ पे आए थे तो एक व्यक्ति ने मुझे निवेदन किया, उन्हें हमारी किताबें बहुत अच्छी लगी, तो वन जेंटलमैन रिक्वेस्टेड मी टू ट्रांसलेट एंड राइट चैतन्य चरितामृत एज वेल। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद भागवत लिख रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने और उस व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी को विनती की कि आप ही वो है जो अच्छे से काम कर सकते हैं इस भाषांतर का, तो आप ही कीजिए, ऐसा विनती उन्होंने किया। और श्रील प्रभुपाद जी कहे कि शायद चैतन्य महाप्रभु ने ही उनके अंदर से प्रेरणा दिया और मुझे बता रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 72 के एंड में ही लगभग इसका भाषांतर करना शुरू किया था। तो 73 पूरा एक साल चला भाषांतर और 1.5 साल में उन्होंने पूरा भाषांतर कर दिया था। और इसकी प्रिंटिंग की तो लीला आपको पता होगी, लीलामृत में आप पढ़ सकते हैं, केवल 2 महीने के अंदर जो है वो पूरा चैतन्य चरितामृत प्रिंटिंग हो गया था। तो श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल उसके पीछे लग गए थे डंट कर कि चैतन्य चरितामृत आना ही चाहिए। तो उस व्यक्ति को हमने धन्यवाद देना चाहिए जिसने शिलो प्रभुपाद जी को विनती की थी कि आप इसके ऊपर लिखिए क्योंकि आप अच्छे किताबें लिख सकते हैं। तो शिलो प्रभुपाद जी ने भागवत को विराम दिया था उस समय, इसलिए भागवत का प्रभुपाद जी का पूरा अनुवाद नहीं हो पाया। दसवें स्कंद के 13वें अध्याय तक ही आखिर में शिलो प्रभुपाद जी पहुंच पाए। तो हमारा सौभाग्य कि यह चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद के द्वारा हमें मिल गया। तो इसका सही जवाब है 1974 में जो है वो पूरा हो गया था अंग्रेजी भाषांतर। कौन निम्नलिखित है जो सभी रूपों को धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे छाता, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यजनोपवीत और सिंहासन आदि। तो ये हमने सुना है ऑलरेडी, ये अनंत शेष इसका जो है वो सही जवाब है। अनंत शेष सारे लीलाओं में आते हैं और बलराम जी जिनके वो विस्तृत अंश है, बलराम जी भी इसी प्रकार से भगवान की सेवा में अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किन्हें जो है वो भगवान श्री कृष्ण की कला कहा जाता है और मत्स्य, कूर्म और अन्य अवतार के उद्गम है? तो यह है कारणोदक्षाय विष्णु, जो जिनसे जिन्हें कला कहा जाता है और मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों के वो उद्गम होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। कौन सी शक्ति है कृष्ण को आनंद देती है और सारे भक्तों का पोषण करती है? तो वो है श्रीमती राधारानी यानी लादिनी शक्ति। तो इसका जवाब है लादिनी शक्ति। 35वां प्रश्न था, वृक्ष की जो पांचवी शाखा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे और 72 घंटे के लिए लगातार भाव विभर होकर नृत्य किया करते थे, तो इसका सही जवाब है वक्रेश्वर पंडित। तो वक्रेश्वर पंडित जो है वो उनकी लीला भी हमने मध्य लीला में सुनी कि जो टोलियां थी अलग अलग उसमें एक टोली में उनका नाम भी आता है वक्रेश्वर पंडित, जो कि 72 घंटे तक नॉन स्टॉप कीर्तन जो है वो किया करते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप इन्होंने संन्यास लिया, कब लिया था? तो ये भाषांतर के ऊपर थोड़ा कठिन प्रश्न था। शादी के 12 साल बाद, शादी के 24 साल बाद, जीवन की वानप्रस्थ अवस्था में या विवाह समारोह से पहले? तो इसका सही जवाब है विवाह समारोह से बिल्कुल पहले उन्होंने जो है वो संन्यास लिया था। तो ये भाषांतर के आधार पे ही था। चैतन्य महाप्रभु ने किसको रत्नबाहु नाम दिया था जिन्होंने महाप्रभु के लिए पांडुलिपियों की नकल की थी? तो वो थे श्री विजयदास, जिन्होंने सारी जो ग्रंथ थे, लिपियां थी, उन सबको अपने हस्तों के द्वारा लिखा था और उनका हस्ताक्षर भी बिल्कुल जो है वो मोतियों की पंक्ति जैसा सुंदर था। तो इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने रत्नबाहु नाम दिया था। तो ये थे विजयदास। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से किस उम्र में दीक्षा ली थी? तो ये पुनः जो है वो आखिरी अध्याय में आता है आदिलीला के, इसलिए ये है यौवन अवस्था में। यौवन इसका जवाब है, सही जवाब है। 39वां प्रश्न ये थोड़ा सा कठिनतम प्रश्न है, बिल्वमंगल ठाकुर इनके दीक्षा गुरु इनका नाम क्या है? तो आपको लगा होगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आपकी उत्सुकता कितनी है उसके ऊपर ये प्रश्न था। तो बिल्वमंगल ठाकुर इनके दीक्षा गुरु है सोमगिरी, ये इसका सही जवाब है 39वें प्रश्न का। क्योंकि जब कविराज गोस्वामी पहले अध्याय में अन्य गुरुओं को प्रणाम कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक श्लोक ऐसे ही डाल दिया है, मैं मेरे दीक्षा गुरु और मेरी शिक्षा गुरु चिंतामणि और मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरु इनको प्रणाम करता हूं। तो ये तो कविराज गोस्वामी के नहीं थे ये दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो तात्पर्य की पहली पंक्ति में शिलो प्रभुपाद जी उसका क्लियर कराए है कि ये बिल्वमंगल ठाकुर के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु इनका वर्णन है। तो आपके मन में यदि वो प्रश्न उस समय आया होगा और आपने तात्पर्य पढ़ना अपेक्षित नहीं था, लेकिन केवल पहले पंक्ति ही तात्पर्य इसमें ये वर्णन आया गया है, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आना ही चाहिए कि कविराज गोस्वामी ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, कविराज गोस्वामी तो दीक्षा गुरु उनके सोमगिरी है नहीं, तो ये किसके है? चलो तात्पर्य में पढ़ते हैं और पहली पंक्ति पढ़ ली होगी तो ये सोमगिरी जो है वो बिल्वमंगल ठाकुर इनके जो है वो दीक्षा गुरु थे। और चिंतामणि उन तो उनकी शिक्षा गुरु आपको पता है, चिंतामणि किस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर उनके पूर्व आश्रम में जो है वो इस चिंतामणि वेश्या के प्रति आसक्त थे और किस प्रकार से उसकी तरफ गए थे और उसने उन्हें शिक्षा दी थी और आगे चल के उनके जीवन में परिवर्तन आया था। 40वां प्रश्न है, निर्णायक सत्यरूपी मगर सागर में विभिन्न दर्शनों की तुलना किससे की जाती है? तो ये मगर से की जाती है। तो इसमें जो है हमने ऑप्शन जो है वो खास करके कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, शार्क मछली, तिमिंगला, ये भी अन्य जगह पर श्रीमद भागवत में इनका वर्णन आता है। तो ये क्रोकोडाइल्स, दे आर कंसिडर्ड एज क्रोकोडाइल्स। नाना मत महद्ग्रहान व्याप्त सिद्धांत सागरान, मत ग्रहान, ग्रह कौन कर लेता है? तो वो क्रोकोडाइल ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो है वो ये मगर इसका जो है वो सही जवाब है, क्रोकोडाइल। गोविंद समस्त जीवों के हृदय में उसी प्रकार से प्रकट होते हैं, ये भी थोड़ा कठिन प्रश्न में से था, जैसे एक सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है, या एक सूर्य असंख्य जलाशयों में प्रतिबंधित होता है, या एक चंद्र असंख्य रत्नों में और चंद्र जलाशय में प्रतिबंधित होता है। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग थे। तो इसका सही जवाब है पहला, सूर्य जिस प्रकार से अनंत रत्नों में प्रतिबिंबित होते हैं उसी प्रकार से गोविंद सबके हृदयों में जो प्रतिबिंबित होते हैं, यह हमें समझना चाहिए। तो यह केवल भाषांतर की एक पंक्ति निकाल के यहां पे लाई गई थी। हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों से कहा था। तो उसके भी ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे कि महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि नित्यानंद प्रभु से कहा। तो महाप्रभु सारे पार्षदों से ये श्लोक कहे हुए है और हमें भी कहा है, तो हमें भी करना चाहिए। भारत भूमि में यदि हमारा जन्म हुआ है, जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तो अपना जन्म भी सार्थक करना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ के और दूसरों को बता के परोपकार भी करना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन क्या है, तो ये भी कठिन प्रश्नों में से एक था। इंडिस्पेंसिबल, इंसिडेंटल, अननेसेसरी एंड इसेंशियल, तो ये प्रासंगिक भी इसका जवाब है। इंसिडेंटल ये भी केवल अनुवाद से उठाया गया है, प्रासंगिक इसलिए है कि चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने देखा था, कृष्ण जब चले जाते हैं अपना इस धरातल को छोड़ के, तो विचार करते हैं कि मुझे जाना है, और उसी समय जो है वो युगावतार के भी समय हो गया था, तो संयोग हो गया था, तो ये प्रासंगिक जिसे जो है वो कहा जाता है, इंसिडेंटल ऐसे वो है। तो इसका जवाब बी था। 44वां प्रश्न था, गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे कितना गुना आनंद अधिक गोपियों को मिलता है। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, 10,000, 1,00,000, 1,000, 1 करोड़ ऐसे ऑप्शंस थे। तो इसका जवाब है 1 करोड़। ये भी भाषांतर से एज इट इज उठाया गया था, तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। 1 करोड़ गुना बढ़ता है ऐसा बताया गया है, तो करोड़ों गुना बढ़ता होगा, लेकिन जो भाषांतर में ऐसा करोड़ गुना लिखा है तो हमने उसे जो है वो चुना था। तो 1 करोड़ जो है वो मतलब केवल पुस्तक के आधार पर 1 करोड़ जवाब सही है, लीला के आधार पर देखे तो कई सारे करोड़ों गुना हो सकता है, तो हम नहीं बता सकते कितना करोड़ों गुना बढ़ता है। वो गोपियां, जब आप भगवतधाम जाएंगे तो गोपियों से पूछ सकते हैं कि आपका कितना आनंद बढ़ता है। और ये 45वां प्रश्न, ये भी थोड़ा कठिन है, मायावादी सकाम कर्मी तार्किक निंदा करने वाले अभक्त और निम्न श्रेणी के लोगों को कृष्ण भावना की बाढ़ स्पर्श नहीं करती, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। तो इसका सी जवाब है, और कई भक्तों की यहाँ पर भी जो है वो दंडी गुल हो गई होगी, क्योंकि उसके जो अन्य अन्य ऑप्शंस थे वो भी कंफ्यूजिंग थे। 46th क्वेश्चन, इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए, तो गदाधर पंडित जो है वो अंतरंगा शक्ति भगवान की मानी जाती है, जो श्रीमती राधारानी ही है, तो ये है गदाधर पंडित इसका जवाब। वैकुंठ सर्वोच्च भगवान की डैश डैश की अभिव्यक्तियां हैं, वो है अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की 3 शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और बीच में है तटस्थ शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति में उनका वैकुंठ और आध्यात्मिक जगत का प्रकटीकरण, बहिरंगा शक्ति में सारा सृष्टि का प्रकटीकरण, और तटस्थ शक्ति सारे जीव हम लोग यानी उनका प्रकटीकरण। तो ये है भगवान की 3 शक्तियां। भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से कौन रहते हैं, तो ये किशोर रहते हैं, किशोर रूप भगवान श्री कृष्ण का नित्य रूप है, तो न तो एक बच्चा, न एक वयस्क, न बूढ़ा व्यक्ति, तो ये किशोर है। ये आसान प्रश्न था। भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, हर एक दिन में, तो इसका विस्तार से वर्णन जो है वो 4th अध्याय में आ जाता है, आदि लीला के पहले श्लोकों में है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग प्रश्न था, 50वां डिफिकल्ट क्वेश्चन था। श्वेत, रक्त, पीत, ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें भगवान क्रमशः कौन से युग में धारण करते हैं। शुक्ल, रक्तस्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक, उसमें कोट किया है चैतन्य चरितामृत में। तो श्वेत, रक्त और पीत जो है वो सत्य, त्रेता और कली, इसमें जो है वो अवतरित होते हैं। तो श्वेत रूप में हंस के रूप में हंस, रक्त जो है वो त्रेता, उसमें यज्ञ मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और पीत कलयुग में जो है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो है वो युग अवतार है। आप कहेंगे कि त्रेता में मैं आपको यज्ञ मूर्ति बता रहा हूं, लेकिन त्रेता में दूसरे भी भगवान के अवतार हुए थे, प्रभु रामचंद्र जी भी उसी समय आए थे। तो वो युगावतार नहीं थे, रामचंद्र भगवान लीला अवतार में उसकी गणना करती है। तो ये जो बताए गए हैं ये केवल युगावतार के बारे में जो है वो चर्चा है। 51वां प्रश्न, जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से जो है वो नास्तिक है। नास्तिक उसका सही जवाब है। जब डैश डैश ने अपने पिता से सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे तो अत्यधिक अप्रसन्न हुए थे, वो थे अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद। तो इसका जवाब है सही, अच्युतानंद। क्यों वो अप्रसन्न हुए थे केशव भारती से संन्यास लिया है, तो क्योंकि वो जानते थे कि केशव भारती मायावत संप्रदाय से है और चैतन्य महाप्रभु वो तो ईश्वर का प्रेम प्रदान करने वाले है, तो उन्होंने मायावत संन्यास मायावादी सन्यासी से कैसे दीक्षा ग्रहण की, इसलिए वो अप्रसन्न हुए थे। लेकिन बाद में उन्हें समझौता करते अद्वैताचार्य, फिर वो समझ जाते हैं। तो ये भी अद्वैत तत्व निरूपण, इसमें ये प्रश्न उसमें से ये प्रश्न था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ के चरणों में गिर गए और उन्हें एक चीज दान में मांगी थी, क्या थी वो, कि एकादशी के दिन अन्न न खाएं। इसके भी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, तो बी जवाब था इसका। एकादशी के दिन उन्हें मीठे चावल दे, अन्न न खाए, कुछ भी न खाए, ये भी एक ऑप्शन था, तो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। तो केवल एकादशी के दिन अन्न नहीं खाए, डोंट ईट ग्रेन्स, ऐसा उनका जो है वो निवेदन था अपनी माता के लिए। कविराज गोस्वामी ने सभी अध्यायों के अंत में किसे प्रार्थना की है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे या रास चैतन्य चरित अमृत कहे कृष्ण दास। आपको अभी याद भी हो गया होगा वह श्लोक, रूप रघुनाथ गोस्वामी इनके चरणों में वो वंदना करते हैं। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी किसके उपासक थे, तो नरसिम्हादेव के उपासक थे, इसलिए महाप्रभु ने उनका नाम और एक रख दिया था, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी इज इक्वल टू नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। तो आपने यदि मध्य और अंत्य भी थोड़ा सुना होगा तो आपको ये आ जाता था। 55वां सवाल था। अगला है, दामोदर पंडित के छोटे भाई जिनका नाम क्या था, उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता है, तो उसका जवाब था शंकर पंडित। शंकर पंडित जो है वो दामोदर पंडित इनके भाई है और महाप्रभु की पादुका के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध है। चैतन्य भागवत में इसका विस्तार से वर्णन आता है कि क्यों और कैसे, लेकिन हमें जो है वो यहां तक ही मर्यादा थी। तो इसमें भी आपने देखा होगा हमने बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए अलग अलग ब्रांचेस से, जो भक्तों के मन में कई सारे प्रश्न थे कि इतने ब्रांचेस है क्या, कुछ याद रखने का क्या क्या है, तो हमने जो है वो केवल जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है उनके बारे में ही प्रश्न पूछे थे। निम्नलिखित में से कौन श्री गदाधर पंडित की मुख्य शाखाएं हैं, तो ध्रुवानंद, श्रीधर और हरिदास ब्रह्मचारी, रघुनाथ भागवताचार्य, ये सारे है। तो उसका जवाब है उपर्युक्त सभी जो है वो गदाधर पंडित, इनकी इनकी शाखा का जो वर्णन है उसमें से एक ही प्रश्न हमने यहाँ पे पूछा था। किनके टूटे हुए लोहे के पात्र से चैतन्य महाप्रभु जल पीते थे, तो वो थे श्रीधर कोलवेच्चा। तो श्रीधर इसका जो है वो सही जवाब माना जाएगा। काशीश्वर और गोविंद ये चैतन्य महाप्रभु के कौन थे, तो इसके भी ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। तो ये गुरु भाई, गुरु के गुरु भाई, शिष्य या गुरु के भाई, तो ये थे गुरु भाई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी के ही ये दोनों शिष्य थे, इसलिए वो जो है वो गुरु भाई बन जाते हैं। किस विग्रह को संबंध विग्रह कहा जाता है, तो राधा मदन मोहन। ये हमारे दूसरे दिन का जो सत्र था उसमें प्रवचन में जो कविराज गोस्वामी ने वंदना की थी उसमें हमने बताया था, संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह होते हैं। संबंध विग्रह है हमारे मदन मोहन, अभिधेय विग्रह है कौन है, राधा गोविंद जी, और प्रयोजन विग्रह है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। तो ये तीन विग्रह है, हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है 60वें प्रश्न का, राधा मदन मोहन। वर्तमान मनु कौन है जिन्हें कौन से नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में सातवें मनु है वर्तमान मनु, और उन्हें जो है वो कौन से नाम से, उन्हें वैवस्वत नाम से जाना जाता है। तो ये उसका सही जवाब है। किसकी कृपा से गोपाल चापल ब्राह्मण सारे पापों के फल से मुक्त हो गया, तो इसका सही जवाब है श्रीवास ठाकुर की कृपा से, क्योंकि श्रीवास ठाकुर के प्रति उन्होंने अपराध किया था और महाप्रभु ने कहा था उन्हें कि आप उनकी शरण ग्रहण कीजिए, तब हम आपको मतलब उनकी शरण ग्रहण करेंगे तो वो क्षमा करेंगे आपको, क्योंकि वैष्णव अपराध जो है वो तभी क्षम्य किया जा सकता है, भगवान क्षमा नहीं करते वैष्णव अपराध को, उस वैष्णव जिसके प्रति अपराध हुआ है वही क्षमा करते हैं, और उस लीला से दर्शा था। तो इसका सही जवाब श्रीवास ठाकुर ही है। विराट रूप किसका अंश माना जाता है, तो विराट रूप जो है वो गर्भोदक शाही विष्णु इनका अंश माना जाता है, ये उसका सही जवाब है, गर्भोदक शाही विष्णु। 64वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु जब बालक थे तब उन्होंने मिट्टी खाई थी, क्यों मिट्टी खाई थी? तो ये आपके समझ के ऊपर आधारित ये प्रश्न था कि वो मायावाद दर्शन का खंडन करना चाहते थे। उसके ऑप्शन भी कई अच्छे से बताए गए थे कि माता शची को विश्वरूप दिखाना चाहते थे जो कि माता यशोदा को उन्होंने दिखाया था, या माँ को तंग करने के लिए, या नवदीप धाम की पवित्र पवित्र धूल का आस्वादन करने के लिए। तो भक्त इसमें कंफ्यूज हो जाए इसलिए इस प्रकार के जो ऑप्शंस बनाए गए थे, तो वो मायावाद दर्शन का खंडन करने के लिए ये लीला हुई थी, ये आपको समझ में आना चाहिए। संकीर्तन करने पर एक दिन के पश्चात चैतन्य महाप्रभु आंगन में किसी गुठली डाली कि तुरंत वो गुठली वृक्ष बन गई और सारे भक्तों ने आस्वादन किया, तो वो आम का पेड़ था। अभी आम का सीजन भी चल रहा है, वैशाखा महीना है, तो आम जो है वो इस प्रकार से महाप्रभु उसमें गुठली भी नहीं हुआ करती थी और उसका छिलका भी नहीं हुआ करता था, ऐसे दिव्य आम हुआ करते थे। हाँ, एक श्लोक हमने जो अलग अलग श्लोक दिए थे आपको याद करने के लिए, तो उसका प्रयोजन यह था कि आप थोड़े वाकिफ हो जाए कि श्लोक याद करना भी जो बहुत बड़ी बात नहीं होती, कुछ भक्त डरते हैं श्लोकों को याद करने के लिए, इसलिए हमने महत्वपूर्ण श्लोक चयन करके दिए थे और इस प्रश्न पत्रिका में उसको सम्मिलित किया गया था। तो एक प्रश्न था, इसका ऑप्शन डी है, जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे। तो इसमें आपको ये भी समझ में आता है कि शिक्षा गुरु जो है वो हमारे बहुत महान है और शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु से भी अधिक ऊंचा स्थान चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, जो हमें शिक्षा देते हैं। तो जीवे साक्षात नाही, तो इसका ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग थे, जीवे साक्षात ही नाही, आप यदि हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ कर सकते थे तो ये ऑप्शन उसके लिए बनाए गए थे। तो आपने यदि ठीक से केवल श्लोकों को सुना भी रहा होगा, ऑडियो फाइल हमने भेजी थी, या पढ़ा भी रहा होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया होगा, डी ऑप्शन है, जीवे साक्षात नाही ताते। आदि लीला के पहले कितने अध्याय में चैतन्य चरितामृत की प्रस्तावना है? तो आदि लीला के पहले 12 अध्याय जो है वो संपूर्ण चैतन्य चरितामृत की प्रस्तावना मानी जाती है। ये कविराज गोस्वामी ने अपने श्लोक में भी बताया है, आखिर में जब उन्होंने इंडेक्स गणना की है 17वें अध्याय में, उसमें भी वो बताते हैं कि ये जो 12 अध्याय आमुख है प्रस्तावना के रूप में, और जो 5 रस मैंने 5 अध्याय में दिए है, तो मतलब 13वां अध्याय जन्म वर्णन है और बाकी आगे 4 वाले महाप्रभु के 4 उम्र में 4 प्रकार से लीलाओं का विभाजन किया गया है। तो ये जो पहले 12 अध्याय है वो संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का प्रस्तावना के रूप में माने जाते हैं, ये स्वयं कविराज गोस्वामी कहते हैं, हमने हमारे प्रवचन में भी इसके बारे में बताया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का आंतरिक कारण कौन सा है? तो इसमें 2 आंतरिक कारण दिए गए थे और उपरयुक्त तो 2, तो राधारानी के प्रेम की महानता को समझना और अपनी मिठास का स्वाद चखना, और तीसरा भी एक कारण है कि राधारानी को सौख्यम चास्य की जो सुख का अनुभूति करती है राधारानी वो क्या है वो मैं चखना चाहता हूं। तो ये 3 कारण थे, तो हमने 2 दिए थे और तीसरा कंफ्यूज करने के लिए आपको कि प्रेमा भक्ति प्रदान करना उसके लिए दिया गया था। 69वां प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत में कितने विषयों का वर्णन है और आखिरी विषय क्या कहलाता है? तो श्रीमद् भागवत में 10 विषय है, किसी को पता नहीं रहेगा तो हमने 12 ऑप्शन भी देख के रखा था, तो 12 स्कंद है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 12 विषय हो सकते हैं, तो इसलिए तो 10 विषय है और उसका आखिरी विषय है परम आश्रय। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ही वर्णन आता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरो ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो 10 विषय इस श्लोक में बताए गए है और कविराज गोस्वामी ने विस्तार से भाषांतर किया हुआ है, 1, 2, 3 ऐसे 10 गणना भी की गई है और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक के ऊपर टिप्पणी भी दी है, एक विषय मतलब क्या होता है और कहां कहां उसकी चर्चा की गई है। तो यदि हम लोग सीसी भी पढ़ते हैं तो भागवत उसके अंदर हमें मिल जाता है। तो 10वां विषय है परम आश्रय, तो 10 विषय श्रीमद भागवत में वर्णन किए गए हैं और आखिरी विषय है परम आश्रय, तो मुक्ति यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। और 70वां आखिरी प्रश्न वो जो आसान था, किसने किसे कहा था, गांव के नाते नीलंबर चक्रवर्ती ठाकुर तो मेरे चाचा लगते थे, ये चांद काजी चैतन्य महाप्रभु से कहे थे। तो यदि आपने 17वें अध्याय में इसको पढ़ा होगा, चांद काजी के द्वारा महाप्रभु का जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट निकला था, तो चांद काजी महाप्रभु को इस प्रकार से कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 70 प्रश्न जो है वो हो जाते हैं। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ हो गई है, और उससे फिर आप गलती को सुधार सकते हैं, और यदि आगे अगली कोई परीक्षा होगी तो इनमें आप सुधार ला सकते हैं, और कैसे पढ़ना चाहिए ये भी आपको इससे जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बहुत लोगों का प्रश्न था कि हमारी अगली परीक्षा कब होगी, और मध्य लीला के ऊपर भी हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमने तय किया है, आप ठीक से सुन लीजिए, कि हमारी अगली परीक्षा संपूर्ण मध्य लीला के आधार पे होगी, और ये होगी 21 जून रविवार के दिन, क्योंकि मध्य लीला में 25 अध्याय है, जैसा हमने कहा था आदि लीला में 20 अध्याय है, मध्य लीला में 25 और अंत्य लीला में 20 अध्याय है, पुनः तो 25 अध्याय है, तो पढ़ने के लिए यदि आप दो दिन में एक अध्याय या एक दिन में एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं, उसमें 19 प्रवचनों की श्रृंखला है, तो आपको हम सारा सिलेबस भेज देंगे कि कितने प्रवचन कहां से कहां तक आपको सुनने होंगे, उसका पूरा प्लेलिस्ट है, और कितने अध्याय है वो, और कौन से श्लोक याद करने के लिए दिए जाएंगे मध्य लीला में से, वो भी हम लोग देने वाले हैं। तो मध्य लीला थोड़ी विस्तारित है, आप किताबों के ऊपर मत जाइए, कहेंगे कि आदि लीला में केवल दो किताबें थी, मध्य लीला की 5 किताबें हैं, तो किताबों के ऊपर मत जाइए, आप अध्याय केवल देख लीजिए, क्योंकि हम केवल श्लोक और अनुवाद ही कर रहे हैं, तात्पर्य तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन विनती करेंगे आपसे कि सारी परीक्षा होने के बाद आप पुनः एक बार तात्पर्यों को पढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है, और उसका और एक अलग रूप जो है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो मध्य लीला की परीक्षा होंगी हमारी 21 जून 2020 को, लगभग 48-50 दिन आपको उसमें मिल जाएंगे अध्ययन के लिए, तो उतना समय काफी है संपूर्ण मध्य लीला का अध्ययन करने के लिए। और जैसे बताया जाता है कि परीक्षा होने के बाद थोड़ी छुट्टी भी देनी चाहिए, तो हमारी जो श्रृंखला चल रही है, और कुछ भक्त जैसे जिनके मन में इतना चैतन्य महाप्रभु भर गए हैं कि अभी वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो हम अभी सोचे हैं कि क्योंकि अभी नरसिंह चतुर्दशी भी आ रही है, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग उपक्रम है, ऑनलाइन प्रवचन होने वाले हैं, हमारे मंदिर के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे भी आप देख सकते हैं, तो आपको नरसिंह चतुर्दशी का जो प्रवचन होगा वो भी लाइव सुनने को मिलेगा। नरसिंह चतुर्दशी 6 तारीख को है, 6 मई को, आज तारीख है 4, तो हम लोग 2 दिन आपको छुट्टी दे रहे हैं इस चैतन्य श्रृंखला से, क्योंकि हमारा भी थोड़ा एग्जर्शन हो गया है, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, और हमारे कैमरामैन उनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, कैमरा को थोड़ा विश्रांति मिल जाएगा, और खास करके अभी मई महीना चल रहा है, तो एग्जाम के बाद छुट्टी तो दी जाती है, लेकिन हमने मध्य लीला का परीक्षा बता के आपको अध्ययन के लिए जो है वो जारी रखा है, क्योंकि ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे केसेस बढ़ रहे हैं। आज तो वृंदावन कॉलोनी वैद्यनगर में भी एक केस हुई मंदिर के नजदीक ही, तो मंदिर और कम से कम 21 दिन तो लॉकडाउन में ही रहेगा, तो आप आशा छोड़ दीजिए कि मंदिर आना हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन बने रहिए इस प्रकार से, और घर पे जो है वो मध्य लीला का अध्ययन करते रहिए। और अभी हम अगला मिलेंगे, हमारी अंत्य लीला के केवल 5 अध्याय बाकी है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिव्य रस प्रस्तुत किया है, इसे मैंने कहां पर सुना नहीं है, लेकिन जितनी मेरी समझ जाती है, हम आदि मध्य और अंत्य इनका भी विभाजन करके ये कह सकते हैं कि आदि लीला संबंध ज्ञान स्थापित करती है, मध्य लीला अभिधेय ज्ञान स्थापित करती है, और अंत लीला प्रयोजन ज्ञान स्थापित करती है। तो ये भी हमें देखा जा सकता है, यदि आप संबंध अभिधेय और प्रयोजन मध्य लीला से ठीक से समझे होंगे, तो आदि लीला में संबंध मतलब सारे तत्वों की चर्चा की गई है, भगवान कौन है, उनके विस्तार कैसे होते हैं, मध्य लीला में संबंध भी है, जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान देते हैं तो वो भी है, लेकिन खास करके अभिधेय मतलब भक्ति की विधि, जो महाप्रभु कीर्तन किए हैं दक्षिण भारत में, वृंदावन में गए हैं, प्रचार किया है काफी सारा, तो ये सारा प्रचार और भक्ति की विधि की ज्यादा चर्चा मध्य लीला में पाई जाती है। और अंत्य लीला मतलब प्रयोजन है, मतलब भगवत प्रेम प्राप्ति और उसका फल, तो प्रयोजन के रूप में अंत्य लीला हमें मिलती है कि किस प्रकार से हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य क्या होना चाहिए, और महाप्रभु ने उसे सर्वोच्च सीमा में कैसे प्रस्तुत किया। तो हमारे 5 अध्याय अंत्य लीला के अभी भी बाकी है, तो उन्हें हम लोग जो है वो 7 तारीख से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज 4 तारीख है, 5 और 6 आप नरसिम्हा कथा और उनका आस्वादन कीजिए, मध्य लीला का अध्ययन शुरू कर दीजिए, और 7 तारीख से आगे हम लोग जो है वो 4 से 5 सत्रों में हमारी अंत्य लीला उसे भी जो हम लोग समाप्त कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और पुनः एक बार सारे विजेताओं को भी अभिनंदन, धन्यवाद। और टॉपर हमारे जो भी है, खास करके रमणी रोहिणी माताजी, इनको भी हृदय पूर्वक अभिनंदन। सारे भक्तों को जिन्होंने परिश्रम किए हैं, पढ़ाई की है, उन्हें अभिनंदन। जिन्होंने पढ़ाई की है, परीक्षा नहीं दी है, उन्हें भी अभिनंदन की किस प्रकार से उन्होंने कम से कम पढ़ाई तो की है। और सारे भक्त जो केवल सुन रहे हैं, उनका भी अभिनंदन कि किस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय पूर्वक बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।